यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरा तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुञ्ज विहारि जय राधा माधव कुञ्ज विहारि जय गोपी जन वल्लभ यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 राम ता निष्फला भविष्यन्ति ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचित्तपि स्फुटम् न कदाचित्तपि स्फुटम् विप्रामन्तविदो युक्ता तेरिया प्रोक्ता तथा शिशः ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचित् अपि स्फुटम्
मन्त्रविदो
युक्ता तेरिया प्रोक्ता तथा शिशः विष्णु को संतुष्ट करने के निमित्त किया जाता है। यज्ञार्थात कर्म मन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। इस युग में योग्य ब्राह्मण के न होने से मनुष्य को चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा यज्ञ करे। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेत। यह जीवन यज्ञ के निमित्त है और यज्ञ हरे कृष्ण कीर्तन द्वारा संपन्न किया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साद्विजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सातवें अध्याय में दक्ष स्कंध है। अब तक हमने सुना था कि किस प्रकार भगवान ने उस शकट को वध किया सुशक, और उसके बाद अब का जो अध्याय आएगा उसमें मतलब इसके बाद तुरंत इसके बाद जो प्रसंग चालू हो रहा है वो तृणावत का उद्धार, भगवान तृणावत को वध करेंगे। तो एक ही अध्याय में भगवान ने दो असुरों का वध किया, इसका वर्णन संक्षेप में किया गया है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। और यहाँ पर जब असुर का वध हो गया और असुर का वध होने के बाद नंद बाबा ने ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवाया और यज्ञ के द्वारा अंत में दक्षिणा प्रदान किया। दक्षिणा प्रदान करने के बाद ब्राह्मणों ने आशीर्वचन दिए, अर्थात भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दिए जा रहे हैं कि वो बहुत लंबी आयुष्य प्राप्त करें, इस प्रकार आशीर्वाद दिए। तो उसके विषय में सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि जो ब्राह्मण होते हैं उनके वचन विफल नहीं जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद महाराज कहते हैं कलयुग पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कलयुग में याज्ञिक ब्राह्मण बहुत कम होते हैं और मंत्रोच्चारण में भी इतने पटु नहीं होते हैं, और यज्ञ करना उसके लिए क्योंकि बहुत सारी त्रुटियां रह जाती है यज्ञ करने में, इसलिए कलयुग में केवल एक ही यज्ञ संस्तुति किया गया है और वो है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। तो वैसे ब्राह्मणों के विषय में या फिर हमारे संस्था या फिर अपने इस्कॉन के बेस के रूप में इसको स्थापित किया गया है। जैसे रूप गोस्वामी की बातों को प्रभुपाद महाराज ने भक्ति रसामृत सिंधु के प्रारंभ में लिखा है कि ये इस्कॉन संस्था जो है वो ब्राह्मण बनाने के लिए है ना, क्योंकि कलयुग में प्राय सभी लोग शूद्र है ना, कलौ क्षुद्र संभव, सभी लोग शूद्र जन्म लेते हैं, लेकिन ये संस्था जो है वो सभी को ब्राह्मण पद तक ऊपर उठाती है और ब्राह्मण से भी ऊंचा पद है वैष्णव। अगर कोई वैष्णव बन जाता है तो ब्राह्मण के सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। तो ब्राह्मणों के 12 गुणों को भगवान ने भगवद गीता में बताया है ना, और भागवतम में भी सातवें स्कंध में इसका वर्णन है कि शम दम तप शोषम शांति रार्दवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। इस प्रकार ब्राह्मणों के 12 गुण भगवद गीता में भगवान ने बताया। हालांकि वो 12 गुण नहीं बताया, कुछ ही गुणों को भगवान ने वर्णित किया है, लेकिन विशेष रूप से ब्राह्मणों के 12 गुण से ही वो प्रख्यात, उसको ही विप्र कहा जाता है ना। जैसे भागवतम में प्रहलाद महाराज ने बताया, प्रहलाद महाराज ने बहुत अच्छी बात सबसे पहले बताई कि ब्राह्मण जो होता है वो 12 गुणों से युक्त होता है ना। और 12 गुण ब्राह्मणों के कहीं पे स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि वो लिख लेता हूँ। तो ब्राह्मणों के 12 गुण धर्म पालन, दूसरा है सत्य भाषण करता है वो, तीसरा तपस्या द्वारा इंद्रिय निग्रह, ईर्ष्या से रहित होता है वो, बुद्धिमान होता है, सहिष्णु होता है और अपने जीवन में कभी शत्रु किसी को नहीं बनाता, यज्ञ करना, दान देना, स्थिर रहना, वेदाध्यान और व्रत रखना, ये ब्राह्मणों के 12 गुण हैं। हालांकि प्रहलाद महाराज ने भी भागवतम में बताया है और भगवान ने भी गीता में, लेकिन पूर्ण 12 गुणों को वर्णित नहीं किए हैं। तो ब्राह्मणों के 12 गुण इस प्रकार से बताए गए हैं गीता में और भागवतम में। और जिस प्रकार ब्राह्मणों के गुण है उसी प्रकार वैश्य के, क्षत्रिय के, है ना, इस प्रकार शूद्र के, इनके भी गुणों को वर्णित किया गया है। लेकिन कहा गया है कि ब्राह्मणों को अपने कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना, ब्राह्मण को अपने कर्तव्य नहीं छोड़ने चाहिए, या फिर क्षत्रिय को अपने कर्तव्य नहीं छोड़ने चाहिए। जिस प्रकार ये 12 गुण है, ब्राह्मण को कभी नहीं त्यागने चाहिए और अपने कर्तव्य में, अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। और शूद्र के जो कार्य है, शूद्र को भी कभी नहीं त्यागने चाहिए, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है श्रेयांश धर्मो विगुण अपर धर्मो भया, भगवान ने कहा है। तो इसके ऊपर प्रभुपाद नारद ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे शेर होता है, शेर होता है वो आदमी को खा जाता है ना, उसका वध करके उसको खा सकता है, लेकिन क्या हमारे लिए ये है? वो शेर का धर्म है, उसको पाप नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम उसके धर्म को अपनाने जाएंगे तो हमारे लिए भयावह है ना। उसी प्रकार अगर हम ब्राह्मणों के अपना धर्म छोड़ के हम दूसरे के धर्म को अपनाने जाएंगे तो ये हमारे लिए कैसा होगा? भयावह होगा। तो इस दृष्टांत के द्वारा रूपानंद महाराज ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं, है ना, अपने धर्म में व्यक्ति को स्थिर रहना चाहिए। और मुख्य रूप से ब्राह्मणों को, मान लो कि कभी कभी ऐसी स्थिति निर्माण हो जाती है कि अपना घर बार चलाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो भी उसके लिए कुछ हद तक ही अपने सीमा को पार कर सकता है, है ना। जैसे वर्णन मिलता है कि उसको तीन कार्य तो चाहे वो कोई भी कार्य करे, अपने आपत्कालीन परिस्थिति में भी ये तीन कार्य तो उसको करते ही रहना चाहिए। ब्राह्मण इसको तो कभी नहीं त्याग सकता है, और वो है देव पूजन अर्थात भगवान की पूजा करना और वेदाध्यन करना और दान देना, ये तीन काम उसको कभी नहीं छोड़ने चाहिए। वो चाहे, मान लो कि ब्राह्मण की आपत्कालीन परिस्थिति है, तो उसमें भी स्तर बताया है कि अगर ये नहीं कर सकते हैं तो ये कर, ये नहीं तो ये, लेकिन इससे नीचे तो वो जा ही नहीं सकता है ना। तो उसके भी चार स्तर बताए गए हैं कि ब्राह्मण किस किस कार्य को अगर वो पूर्ण रूप से उसको नहीं कर पाता है तो कौन से कार्य को वो अपना सकता है। तो उसमें कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य, ये जो है वैश्य का कर्म है, लेकिन ये वैश्य का कर्म होते हुए ब्राह्मण अपनी आपत्कालीन परिस्थिति, जैसे कुछ अभी नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो सकेगा, तो उन परिस्थितियों में ब्राह्मण इन कार्यों को अपना सकता है, ब्राह्मण के लिए ये कार्य कर सकता है आपत्कालीन परिस्थिति में। हालांकि पहले वाले जो है उसको तो करना ही है, 12 गुणों से युक्त होना है, लेकिन मान लो वो नहीं, मतलब परिस्थिति ऐसी है कि अब उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आज के युग में हो नहीं सकता है किसी के लिए, तो कुछ लोग शूद्र का कार्य करने लगते, तो ये ब्राह्मण के लिए बिल्कुल वर्जित है, शूद्र के कार्य तो उसको कभी नहीं करने चाहिए। तो उसमें कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य, ये उसके लिए लिमिट है, उसके पार वो नहीं जा सकता, वहां तक वो लिमिट है। और दूसरा, ब्राह्मण जो है कभी क्षत्रिय के कार्य को अपना नहीं सकता है, उसको नहीं अपनाना चाहिए, स्ट्रिक्ट मना किया गया उसके लिए। और शूद्र के कार्य को नहीं अपना, वैश्य के कार्य को अपना सकता है। और दूसरा है, उसके बाद अगर कोई, मान लो कि इससे थोड़ा ऊपर वाला स्थिति तो है, वो खेत में जो किसान लोग बीज निकालते हैं, जब बीज आ जाता है तो वहां पे जाके वो भिक्षा मांगना उसके लिए, ये ब्राह्मण का। और उससे थोड़ा ऊपर खेत में छोड़ा हुआ अन्न जो होता है, क्योंकि जो किसान होता है वो चला जाता है, उसमें कुछ दाने छूट भी जाते हैं, तो वहां पे जाके उसको भी वो अर्जित कर सकता है। और उससे थोड़ा ऊपर वाला उसके लिए है कि दुकान में जब ये दुकानदार अपना सब समेट लेता है तो उसका भी कुछ दाने गिर जाते हैं। तो ये परिस्थितियों में है, मतलब ये एक से बढ़कर एक है, लेकिन उसके लिए लिमिट है कि कृषि गोरक्ष वाणिज्य को पार नहीं करे, है ना। इसके पार जाता है तो वो ब्राह्मण अधम माना जाता है ना। तो ये आपत्कालीन परिस्थितियों का कुछ वर्णन ब्राह्मणों के गुणों के रूप में किया है। ये आप पढ़ेंगे करीबन 11वें स्कंद में ब्राह्मण पूरा वर्णाश्रम पद्धति का वर्णन, एक वर्ण है और एक आश्रम है। तो आश्रम जो है वो आध्यात्मिक उत्थान के लिए है, और वर्ण जो है जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये वर्ण है, तो ये वर्ण है सामाजिक व्यवस्था है ना, सामाजिक उत्थान के लिए है। और जो आश्रम व्यवस्था है वो आध्यात्मिक उत्थान के लिए है। तो समाज की व्यवस्था में ये ब्राह्मण का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन गोपाल महाराज कहते हैं कि अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो वो सीधा वैष्णव पद को प्राप्त करता है, और वैष्णव पद अर्थात इन ब्राह्मणों के गुण तो अपने आप आ जाते हैं और उससे भी ऊपर के स्थानों में। लेकिन बहुत लोगों को ये बात हजम नहीं होती है कि ब्राह्मण पहले भी क्या, आज जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ने वो समय पे तो किया, आज भी कई सारे ऐसे ब्राह्मण लोग हैं जो इस बात को हजम नहीं कर पाते कि अमेरिका और यूरोपी जो वो ब्राह्मण हो सकते, वो लोग जनेऊ धारण करते हैं तो वो लोग ब्राह्मण कैसे बन सकते, क्योंकि वो तो म्लेच्छ है। लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस बात, है ना। हालांकि भगवान की भक्ति करने से यस्यास्ति भक्तिर भगवत चिंतन सर्वे गुणैः सत्र समासते सुरः, है ना। अगर कोई भगवान की भक्ति को अपनाता है तो उसमें तो सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं, तो फिर ये ब्राह्मणों के गुण उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाती, है ना। और भगवान की भक्ति इतनी महान है, जैसे ये 12 गुण आप देखेंगे, ये 12 गुण है, या फिर भगवत गीता में और भी दैवी गुण जिसको बताया गया अभयम सत्तम संशुद्धि आदि, ये सारे गुण जो है अगर हम भक्ति के नियमों को ढंग से पालन करते हैं तो ये सारे गुण अपने आप उसमें समाहित है, आप देख सकते हैं, है ना। जैसे वाचो वेगम मनस क्रोध सत्य भाषण करना, ये सब तो उसमें आ ही गया। तो भक्त के लिए ये प्राथमिक अवस्था है, ये गुणों को अर्जित करना भक्त के लिए बहुत प्रथम अवस्था का स्टेप है। तो इन 12 गुणों के विषय में और भी प्रहलाद महाराज ने जैसे बताया है कि विप्रा द्विषद गुणायुत अरविंद नाभा पादा अरविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थम प्राणम पुनार्ति कुलम तभुरी माना, जिसमें बताया गया है कि ब्राह्मण में कितने विप्रा द्विषद, ब्राह्मण में 12 गुण होते हैं, विप्रा द्विषद, द्वि मतलब दो और षट मतलब छह इंटू दो कितने 12। विप्रा द्विषट गुणा युत अरविंद नाभा विमुखा, अर्थात जो ब्राह्मण होता है वो 12 गुणों से भले ही युक्त है ना, ये सारे गुण उसमें है, लेकिन भगवान की भक्ति से विमुख है, तो उससे वो चांडाल भी श्रेष्ठ है जो भगवान की भक्ति कर रहा है, क्योंकि ये तो अपना भी उद्धार नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ी बात प्रहलाद महाराज ने बताई है, है ना। भागवतम में ये जो श्लोक है वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ वैष्णव कैसे इस बात को पूरी तरह से साबित करता है। तो 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भले ही 12 गुणों से युक्त है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति वो नहीं करता है तो फिर उसके 12 गुणों से उसका खुद का भी उद्धार वो नहीं करता है। और उससे विपरीत भले 12 गुण नहीं है उसमें, लेकिन वो भगवान कृष्ण की भक्ति को संपन्न करता है यदि, तो वो अपना तो उद्धार कर लेता है और साथ साथ अपने पूरे कुल का उद्धार कर लेता है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद महाराज ने बहुत सुंदर बात बताई, उन्होंने बोला कि इस बात को तो हमने खुद ने अनुभव ही किया है। प्रभुपाद महाराज ने कहा है कि इस बात को हमने अनुभव किया है, क्योंकि विदेशी कई सारे भक्त जुड़े, वो लोग भक्ति करते थे लेकिन माता पिता तो कोई भक्ति नहीं करता था, तो कैसे सकुलम पूरा, मतलब ये पूरा कुल को कैसे तारण कर सकता है एक भक्त। तो उसमें प्रभुपाद महाराज ने लिखा है कि जो भक्त होता है यदि उसने भक्ति को संपन्न किया है, भक्ति कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक भक्त था जो भक्ति करता था, बहुत सुंदर भक्ति किया अपने जीवन में, और जब उसकी माता पिता की मृत्यु आई तो मरते समय उनके माता पिता ने कृष्ण के विषय में जिज्ञासा की, पूरा जीवन भर कुछ नहीं भाव पूछा उनको, लेकिन मरते टाइम पे उन्होंने भगवान कृष्ण के विषय में जिज्ञासा कर ली। और आप जानते हैं फिर तो भगवान का जो लॉ है वो तो लगेगा, यम यम वापी स्मरण भाव है ना, अंत काल है चा। तो अंत काल में वो मरते टाइम पे भगवान को याद कर रहा है, मतलब उसके विषय में जिज्ञासा कर रहा है ना। तो एक भक्त यदि भगवान की भक्ति करता है, इसका मतलब है कि वो पूरे संसार की सेवा कर रहे हैं। भक्ति यदि भक्ति करेगा तो पूरे संसार की। कई बार ऐसा होता है पलायनवादी, पलायनवादी मतलब ये लोग को कुछ काम धंधा नहीं है इसके लिए चले गए, मतलब काम नहीं करना है, बेकार में बैठे रहना है इसलिए चले गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, भक्त के ऊपर इस पलायनवादी का आरोप लगाया जाता है, लेकिन भक्त जो है पलायनवादी नहीं है, वो वास्तव में पूरे संसार का हित करने वाला है। क्योंकि भगवान की भक्ति करने से पूरे संसार को वो संतुष्ट कर सकता है ना। देवर्षि भूताप निर्णाम विप्रणाम न किंकरो नायक राजा, वो किसी का भी ऋणी नहीं रह जाता, वो सबको संतुष्ट करने में समर्थ होता है ना। अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर लेता है तो पूरी दुनिया तो अपने आप यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, भगवान को तुष्ट कर लेता है तो दुनिया ऐसे ही तुष्ट हो जाती है। लेकिन बाहरी दृष्टि से ऐसा ही दिखता है कि इन लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है, बेकार है, और हम ही लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वास्तविक सेवा अगर इस समाज की करता है या फिर अपने परिवार की वास्तविक सेवा करता है तो वो भक्त है ना। भक्त ही वास्तविक सेवा करता है, भक्त अपनी भक्ति के द्वारा अपने पूरे कुल को क्या कर लेता है, पाल लेता है। इसलिए भक्त, और कई बार हमने सुना भी है, क्या आरोप लगाते हैं कि मेरे सामने ही पूछा था एक भक्त ने एक दूसरे व्यक्ति ने पूछा था कि मतलब कंप्लेन कर रहे थे कि इनको तो कुछ काम धंधा होता नहीं है, ऐसे ही बैठे रहते। तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि उसको काम नहीं करना था करके तो इधर है। बोला ऐसा भी जवाब होता है क्या? हालांकि उसके लिए बहुत बड़ा काम है, सुबह मंगलारती उठना ये सबसे बड़ी समस्या है ना। बाहर वाले व्यक्ति को अगर बोल दो आप 3 बजे 4 बजे उठ जाओ तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो बहुत बड़ी तपस्या है भक्ति। ऐसे हम सुने हैं कई बार, ऐसे कहते भी है कि भक्ति जो है सूरज से धारा कवियों वदन की, भक्ति जो है वो बहुत कठिन है। क्यों कठिन है भक्ति? क्योंकि भक्ति जो है वो शारीरिक के स्तर की तो है ही, शरीर के लिए तो कसरत है ही है ना, सुबह उठना, मंगलारती करना और यहाँ आरती गाना या फिर उसमें नृत्य आदि करना, तो ये तो है शरीर के लिए। लेकिन ये कैसे हमारे हृदय ये भावनाओं को भी क्या करती है, परिवर्तित करती है ना। कृष्ण भावनामृत अर्थात इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति की भावनाएं कहाँ लगी हुई है, इसके ऊपर बहुत जोर दिया जाता है ना। जैसे उपदेशामृत में स्टार्टिंग में ही प्रथम भूमिका में जिसमें लिखा है, गोपाल नारायण ने कहा है कि भक्त की भावनाओं के ऊपर ही उसकी भक्ति में प्रगति का आधार रहता है ना। यदि हम जो भी सेवा करते हैं, पूजन आदि करते हैं, तो उसके पीछे हमारी भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम गुरु और कृष्ण प्रसन्नता के लिए सेवा करते हैं तो वो हमारी वास्तविक भावना है, सही भावना। अगर वो भावना में कुछ गड़बड़ है तो क्या होगा, हम पूजा लाभ प्रतिष्ठा आदि के लिए भी वो सेवा कर सकते हैं। तो ये भक्ति जो है बहुत सूक्ष्म है, इस भावना से सूक्ष्म है। क्या कि दिखता तो सब कुछ सेम है ना। जैसे कोई व्यक्ति बाहर वाला आके यहाँ झाड़ू मारेगा और एक भक्त मारेगा, तो इस दोनों में अंतर नहीं है। भगवान के मंदिर में झाड़ू मार रहा है, दोनों सही दिखेगा, दिखने में सब कुछ समान है, लेकिन उसकी भावनाओं में अंतर हो सकता है ना। उसकी भावना क्या होती है, मंदिर में झाड़ू मार के कुछ लाभ मिलेगा उसको, भगवान से कुछ मांगेगा है ना, अर्थार्थी होगा। लेकिन भक्त जो होता है वो किस लिए सेवा करता है, केवल भगवत प्रीति अर्थ है। तो इसलिए भक्ति जो है बहुत सूक्ष्म है, भक्ति बहुत सूक्ष्म है इस अर्थ में। तो ये हमारा वास्तविक ये जो सिद्धांत है बहुत ही सूक्ष्म सिद्धांत या फिर बड़ा, इसको ऐसे भी शब्दों में प्रभुपाद महाराज ने कहा है कि ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी बात है समाज के लिए। क्या कि कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति जुड़ता है उसको क्या बना दिया जाता है, ब्राह्मण। और प्रभुपाद महाराज ने बहुत लोगों को ब्राह्मण बना भी दिया है। ब्राह्मण दीक्षा क्या, ब्राह्मण के पास उसको संन्यास भी दीक्षा दे दिए थे, है ना, संन्यास दीक्षा भी दे दिया। तो उन लोगों को देख के बाकी लोग बहुत कमेंट मारते थे कि ये लोग ब्राह्मण नहीं बन सकते, ये नहीं हो सकता। लेकिन आप जानते हैं कि ब्राह्मण हो या कोई भी हो, उसके गुणों से वो निश्चित किया जाता है, है कि नहीं? ब्राह्मण हो या कोई भी हो, उसके गुणों के द्वारा ही ये निर्धारित किया जाएगा कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। और आप देखेंगे कि जो ब्राह्मण होगा या फिर क्षत्रिय होगा या फिर वैश्य या शूद्र, जो भी होगा, अपने स्वभाव को वो छुपा नहीं सकता है। उसका स्वभाव जो होता है वो प्रकट हो ही जाता है, है ना। जैसे मैंने कई बार क्षत्रियों का अनुभव किया है, क्षत्रिय का एक धर्म है, अब क्षत्रिय का धर्म है, उसमें एक मुख्य है कि उसको कभी किसी के सामने मांगना नहीं चाहिए, वो कभी किसी से मांग नहीं सकता है। और ये गुण मैं देखा हूं कई बार, क्षत्रिय जो एक भक्त था, वो मंदिर में आया था सेवा करने, वो क्षत्रिय था। अभी क्या है कि सब्जी मांगने जाते हैं हम लोग सब्जी मंडी में, हम लोग सब्जी मांगने जाते हैं, है ना, तो हम लोग मांग के लाते हैं, तो मांगना नहीं था उसको सब्जी, मांगने के लिए तो हम बोले ही नहीं कि आप जाओ और उसे मांगो, सब्जी मांगने के लिए तो बोले भी नहीं थे हम लोग। अभी सारा बोरी जो सब्जी का भरा था उसको गाड़ी में उठा के हमने रख दिया, लेकिन खाली एक झोला उसको उठा के गाड़ी में रखना था, और हमारे हाथ में पूरा भर गया था, उसको बोला कि ये झोला उठा के उसमें रखो, नहीं रख पाया। मतलब उसको इतना शर्म लग रहा था कि उसको उठा के ले लूंगा, मतलब लोग सोच जाएंगे कि मैं भीख मांग के लेके जा रहा हूं। तो क्षत्रिय के जो कुछ गुण होते हैं, वैश्य में अपने गुण होते हैं, क्षत्रिय में अपने, कुछ मात्रा में तो प्रकट हो ही जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों के हो या उसमें कुछ मात्रा में गुण होते हैं, लेकिन अगर उस कुल में जन्म लिया है तो उस कुल में जन्म लेने के कारण उसको चाहिए कि वो अपने गुणों को विकसित करे। केवल जन्म लेने से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो जाता है, हाँ, लेकिन वो कुल में जन्म लिया है तो अपने गुणों को विकसित करने में वो उसको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। अगर कोई शूद्र कुल में जन्म लिया और ब्राह्मण बनना चाहता है तो उसको परेशान, मतलब बहुत तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो उसको उस अवस्था तक जाने में, उस गुणों को डेवलप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। वैश्य को बिजनेस करने के लिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती, वो तुरंत सीखता है, है ना, और उसको ब्राह्मण बनाने के लिए मेहनत लगता है। लेकिन भगवान की भक्ति इतनी सुंदर है कि कोई भी हो, कैसे भी हो, अगर भगवान की भक्ति करने लगता है तो ये सारे गुण उसमें आ जाते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। वो ब्राह्मण बन के किसी को उपदेश भी दे सकता है और झाड़ू पोछा भी कर सकता है, वो शूद्र का कार्य। तो भक्ति एक ऐसा है कि उसमें सारे गुण आ जाते हैं, है ना, ये चारों वर्ण के भी गुण आ जाते हैं, इवन संन्यास के भी सारे गुण जितना है वो भी आ जाते हैं। तो भगवान की भक्ति इसलिए महान है कि उसमें सारे गुण अपने आप में समाहित होते हैं। इसलिए भक्ति जो है बहुत महान चीज है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो उसके अंदर सारे गुण आ जाते हैं। और दूसरी बात, जहां तक यहां में बताया गया है कि यज्ञ करते हैं या फिर अन्य कोई भी कार्य, शुभ कार्य जब हम करते हैं तो उसमें कई सारी त्रुटियां रह जाती हैं, है ना, बहुत सारी गलती तो हो ही जाती है। जैसे आज के युग में अगर कोई यदि यज्ञ करना चाहता है तो पहली बात है कि उसको शुद्ध घी नहीं मिलेगा, और शुद्ध घी के रूप में लिखा भी जाएगा तो उसको जर्सी गाय का मिल जाएगा, तो जर्सी गाय का जो घी है वो यज्ञ में यूज नहीं किया जा सकता, देसी गाय का ही यूज कर सकते हैं। एक भक्त बता रहे थे कि जर्सी गाय वो 84+1 उसमें एक ऐड हुआ। ऐसे तो बहुत सारे वैरायटी मिलते रहती है क्योंकि आजकल वही चल रहा है, तो 84 लाख में भी ऐड होते जा रहा है धीरे धीरे। तो ब्राह्मण यज्ञ करने के लिए बहुत सारी सामग्रियां मिल नहीं सकती है। दूसरी बात, शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिल सकते हैं, और मान लो ब्राह्मण भी शुद्ध है तो मंत्रोच्चारण ढंग से नहीं कर पाएगा तो उसमें कई सारी त्रुटि रह सकती है। इसके लिए जानते हैं बलि महाराज की सभा में जब वामन भगवान गए थे तभी उन्होंने दान दिया आदि सब क्रिया हो जाने के बाद उसमें बहुत सुंदर एक श्लोक दिया है, मंत्र तंत्र सब छिद्रम देश कालार्थ वस्तुना। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी यज्ञ आदि करे लेकिन उसके साथ साथ उसको क्या करना पड़ता है, अगर कोई व्यक्ति वो सारे यज्ञ करता है तो स्वाभाविक है कि कोई भी यज्ञ करेगा व्यक्ति उसमें त्रुटि रह ही जाती है ना, त्रुटि होना ये संभव है। इसके लिए इन सारी त्रुटियों को शमन करने के लिए एक मंत्र कहा जाता है, यही मंत्र है। अगर कोई व्यक्ति मंत्र तंत्र सच्चिद्रम देश कालार वस्तु न, अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम संकीर्तन करता है तो ये सारे दोष क्या हो जाते हैं, अपने आप उसमें पूर्ण हो जाते हैं। मतलब जितने भी छिद्र रह जाते हैं यज्ञ आदि करने में, जितने भी गलतियां हमारी है, वो गलतियां क्या हो जाती है, अपने आप में पूर्ण हो जाती है, वो गलतियां माफ हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम संकीर्तन को करता है तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद नारायण ने कहा है, हम लोग भी क्या करते हैं, अर्धविग्रह की पूजा आदि करते हैं, तो इसमें भी बहुत सारी त्रुटियां तो रह ही जाती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ साथ में संकीर्तन करते हैं कि जितने भी त्रुटियां हो रही है वो अपने आप में भगवान माफ कर दें और उसको पूर्ण रूप से स्वीकार कर लें। तो स्वाभाविक है कि इस युग में भी अर्धविग्रह की पूजा आदि करना हमारे लिए संभव नहीं है, हम नहीं कर सकते, पूर्ण और शुद्ध रूप से नहीं कर सकते, कर तो रहे लेकिन बहुत त्रुटियां रह जाती है। तो इसको पूर्ण और शुद्ध रूप से हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जब इसको पूर्ण और शुद्ध करना है तो उसके लिए क्या है, भगवान के नाम का कीर्तन करना। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम संकीर्तन को इसके साथ में करेगा तो वो पूर्ण हो जाएगा। लेकिन याद रखना चाहिए कि प्रभुपाद महाराज ने हमको बताया इसमें कि यज्ञ आदि कार्य जो है वो इस युग में कभी संभव है ही नहीं, क्योंकि यज्ञ ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलते। इसके लिए सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम यज्ञ है भगवान का नाम कीर्तन, है ना। इस युग के लिए सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है नाम कीर्तन यज्ञ। और कहा है कि सुमेधस मतलब सुंदर बुद्धि वाले जो होंगे वही लोग केवल इस यज्ञ को करेंगे। कुबुद्धि वाले क्या करेंगे, वो वही यज्ञ करेंगे। हमने कई बार देखा है 1008 कुंडी चंडी यज्ञ, ऐसा आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, है ना, बहुत जगह पर बैनर लगता है। तो 1000 कुंड बनाएंगे, 108 कुंड बनाएंगे, उसमें यज्ञ करेंगे। तो इतना मेहनत, प्रभुपाद कहते हैं कि इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, ये सारे यज्ञों का फल केवल भगवान के नाम के कीर्तन करने से प्राप्त हो सकता है, तो इतना पैसा क्यों व्यय कर रहे हैं लोग। क्योंकि ये जो कार्य है प्राय पॉलिटिशियन लोग करते हैं, पॉलिटिशियन जो लोग होते हैं वो लोग इतना पैसा खर्च करके ऐसे बड़े बड़े यज्ञ का क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। उसको यज्ञ से कुछ मतलब थोड़ी होता है, वो लोग केवल दिखावे के लिए कि हम लोग भी कुछ धार्मिक कार्य करते हैं, इसलिए वो लोग इस यज्ञ को करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे यज्ञों को करके वो लोग अपने पैसे को भी वर्ष बिगाड़ रहे हैं। उससे ऐसा है कि वो लोग भगवान के नाम का संकीर्तन यज्ञ कर लेंगे तो वो जो चाहते हैं वो अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम कीर्तन ऐसा है कि वो जो चाहेगा वो व्यक्ति को नाकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दिवृण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम। अगर कोई व्यक्ति की कामना है या अकाम है, जो भी व्यक्ति हो, अगर कोई व्यक्ति भगवान की कीर्तन को करता है, भगवान की भक्ति को करता है, तो सारी इच्छाएं उसकी पूर्ण हो जाती है। इसके लिए भगवान का नाम संकीर्तन ही केवल इस युग के लिए सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है और वो हमें निरंतर करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? लेकिन एक बात है कि प्रश्न तो यह है प्रभु जी का कि अगर कोई मान लो कि अन्य कुल से है और ब्राह्मण हो गए, और ब्राह्मण होने के बाद क्या वो यज्ञ आदि करके अपनी जीविका चला सकते हैं, तो इसमें परफेक्ट मैं आंसर वो तो नहीं दे सकता हूँ निर्णय, क्योंकि इसके विषय में मैंने पहले कभी सुना नहीं है। अगर कोई भक्त बता सकता है तो बता, मतलब कहीं और भी पढ़ा हो सुना हो तो बता सकते हैं।
ये जो लिखा है केवल भगवान का सेवा करने के लिए दिया गया, शरीर में बाहर के लिए नहीं। तो ये क्वेश्चन में रखा है
कथा करके कुछ लोग होते हैं जो अपनी जीविका चलाते हैं, तो उसके विषय में बहुत चर्चा किए थे। तो उसमें पूछा था मैंने कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति भक्त है और वो भागवत कथा करता है और अपना जीविका उससे चलाता है, तो भक्तिरसामी सिंह तो स्ट्रिक्टली मना करता है कि वो नहीं कर सकता। इवन उन्होंने ये भी बताया कि भागवत कथा करने के द्वारा जो पैसा आता है उस धन के द्वारा हम ब्रह्मचारी आश्रम भी नहीं चला, ब्रह्मचारी आश्रम भी हम उस धन से नहीं चला सकते। उस धन का केवल डायरेक्ट भगवान की सेवा में यूज होना चाहिए जो भागवत, क्योंकि वो शास्त्र को शास्त्र के माध्यम से पैसा आया, भागवत जैसे ग्रंथ के माध्यम से पैसा आया, तो वो धन केवल हम भगवान की सेवा में। अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति, मान लो फिर मैंने पूछा कि कुछ लोग ऐसे भी है जो ऐसा कहते हैं कि गुरु का आदेश है, कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं, मैंने कई बार सुना भी है, तो गुरु का आज्ञा है हमको, तो ऐसा ही बोलते हैं। तो मैंने ये भी कहा कि वो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हमको गुरु की आज्ञा है, तो वो टीचर ने ऐसा ही कहा हमको कि वो गुरु भी मूर्ख है जो ऐसी आज्ञा देता है, वो गुरु भी मूर्ख है अगर वो ऐसी आज्ञा देता है कि भागवत कथा करके तुम अपना घर चला सकते, क्योंकि वो कहीं भी प्रामाणिक नहीं है। ये इसके लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि भागवत कथा या फिर अन्य जो है वो केवल भक्ति की उन्नति के लिए हमको दिया गया है, न कि अपनी जीविका चलाने के लिए। और ये ब्रह्मचारी ये आदि भी उसमें भी उसको नहीं यूज कर सकते हैं। हाँ कीर्तन जो है वो हमेशा शुद्ध करने वाला है, वो चाहे किसी भी अवस्था में किया जाए, है ना, चाहे आप बोलते हुए खाएते सोते यथा तथा नाम ले, भगवान का नाम हमेशा शुद्ध करने वाला है। हाँ ये है कि अभी वो उस अवस्था में ले रहा है, लेकिन धीरे धीरे वही महामंत्र उसको शुद्ध करेगा और उसको एक दिन ये भी ज्ञात दिलाएगा कि मुझे ध्यान पूर्वक जप करना है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम भगवान के नाम को छोड़ देंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे, या फिर शुद्ध होने के, भगवान का नाम शुद्ध होने के लिए है, शुद्ध होने के बाद ग्रहण करने वाली चीज नहीं है। वो भगवान का नाम ले रहा है मतलब उसका काम चालू है, वो धीरे धीरे एक दिन शुद्ध हो जाएगा। भगवान का नाम एक दवाई के समान है, वो काम कर ही रहा है, पिएगा तो काम करेगा और शुद्ध हो जाएगा। वही मैं बोल रहा हूँ ना, ध्यान लगा के जप करना मतलब ये आप अच्छी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। ध्यान लगा के जप करना मतलब अच्छी स्थिति, प्रारंभिक अवस्था में ऐसा होता ही है कि भक्त लोग बात करते हुए जप करेंगे, चलते हुए करेंगे, या फिर कैसे भी भगवान का नाम ले रहा है तो वो उस अवस्था को प्राप्त करके एक दिन शुद्ध हो ही जाए, कर रहा है ये बड़ी बात है उसके लिए। ठीक है, हरे कृष्ण।
Thank you.
प्रश्न क्या है आपका?
वो भक्त भी तो जीविका जी ने जो
वो क्या
एक ब्राह्मण यज्ञ करा करके भी ब्राह्मण का कर्म क्या
है? एक भक्त भी तो अपनी जीविका के लिए कुछ कार्य करता है। अगर वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों के कर्तव्य को करके भले ही यज्ञ आदि करके अपना जीविका चला है।
ने बताया क्या कर्म शास्त्री ने बताया क्या ब्राह्मण
ब्राह्मण का कर्म है यज्ञ आदि करना, दान देना, जैसे मैंने अभी बताया, धर्म पालन करना, सत्य भाषण करना, तपस्या द्वारा इंद्रिय का निग्रह करना, ये जो ब्राह्मणों के गुण हैं, और उसके कर्तव्य के विषय में इसी प्रकार ये कर्म है उसके, उसी में समागम तपस्वकम शांति आर्जव्यमतम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम, ये ब्रह्म के कर्म बताए गए ब्राह्मण के। तो ब्राह्मण उस कार्य को करता है, लेकिन ये मेरी बात है कि भक्ति के अंदर आने के बाद जो ब्राह्मण बना है, अगर महाराज से दीक्षा लिया है, तो वो कर्मकांड के द्वारा अपनी जीविका नहीं चला सकता है। अगर वो पहले से वही कार्य करते आए तो वो करे, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन मान लो कि इसमें आने के बाद दीक्षा लिया, अभी दूसरा नहीं करना, यही करके मैं अपना जीविका चलाऊंगा, तो ये दोष है। पहले से करते आ रहा है, जैसे कोई ब्राह्मण है भक्ति में जुड़ा, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला ही ना,
उसके बाद में वो ब्राह्मण दीक्षा ली है मान लीजिए,
हाँ,
तो वो कर रहा है
वो ठीक है, लेकिन अन्य कुल से आने के बाद ब्राह्मण दीक्षा लिया और फिर यज्ञ आदि करके अपना जीविका चलाए, ये गलत होगा। जन्म से ब्राह्मण को कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे एक बार तर्क भी हो गया था कि मान लो कि जन्म से ब्राह्मण का वैल्यू नहीं है तो वो ब्राह्मण कुल में जन्म क्यों लिया? क्योंकि उसने कर्म किया था, उसने वो कर्म किया था इसलिए तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। तो जन्म का कुछ हद तक वैल्यू है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो पूरा ब्राह्मण। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद उसको वो गुणों को अर्जित करने में बहुत कठिनाई नहीं लगती है, और वैश्य को अपने गुणों को अर्जित करने में कठिनाई नहीं है, वो सरलता से कर सकता है, बहुत आसानी से। हाँ, इसलिए उसको दोष नहीं लगता है। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।
रोका देखे ओके आ गया, ओके करो, ओके हो गया।